पृष्ठ संख्या 25। संविधान सभा में प्रवेश 24 जनवरी 1947 को के.एम. मुंशी ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा कि सदस्यों की एक सलाहकार समिति बना दी जाए और जो 3 माह में सभा के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करें और समय समय पर अंतरिम रिपोर्ट दें। 16 मई 1946 के कैबिनेट मिशन के वक्तव्य के अनुसरण में सभा ने 72 सदस्यों की सलाहकार समिति बनाई और इसे अधिकार दिया गया कि यह समिति उन्हें भी जोड़ सकती है जो सभा के सदस्य नहीं हैं। इसमें जगजीवन राम और अंबेडकर दोनों चुने गए। 1 मई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभा के समक्ष मूल अधिकारों की अंतरिम रपट पेश की। मूल अधिकारों का मसविदा तैयार करने की सलाहकार समिति में डॉक्टर अंबेडकर भी थे। प्रस्ताव आया, दबाव अथवा प्रभाव पैदा कर किए गए किसी भी धर्म परिवर्तन को कानूनी मान्यता नहीं होगी। इसमें श्री के.एम. मुंशी ने संशोधन रख दिया कि किसी दबाव में धर्म परिवर्तन अथवा 18 वर्ष से कम उम्र वालों का धर्म परिवर्तन कानूनी तौर पर स्वीकार्य नहीं होगा। इस पर पक्ष विपक्ष में काफी तर्क दिए गए। अंत में डॉक्टर अंबेडकर ने सलाहकार समिति का पक्ष रखते हुए कहा कि अल्पायु में धर्म परिवर्तन के कानूनी मान्यता पर हम लोगों के पास कोई सहज रास्ता नहीं मिला। माइनर बच्चों में एक तो अभिभावक वाले बच्चे, दूसरे अनाथ बच्चे, तो क्या अनाथ बच्चों का कोई धर्म नहीं होना चाहिए? अभिभावक वाले बच्चे भी दो तरह के हैं। एक वे अभिभावक जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है और अपने बच्चों को भी धर्म परिवर्तन करा दिया है। दूसरे वे अभिभावक जिन्होंने अपने धर्म बदल लिए लेकिन बच्चों के नहीं बदले गए। ऐसी हालत में धर्म परिवर्तित अभिभावक यदि अपने बच्चों का संस्कार अपनी पुरानी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नहीं करते, नए धर्म के अनुसार करते हैं, तो क्या ऐसे अभिभावक और उनके वार्ड दंड के पात्र समझे जाएंगे? इसीलिए सभा में इस गंभीर पहलू पर विचार करने और मुंशी के संशोधन को स्वीकार करने से पूर्व एक बार और इस धारा को सलाहकार समिति को भेज दिया जाए और वह फिर से इसके सभी पक्षों की राय पर विचार के बाद अपना मंतव्य सभा को दे। डॉक्टर अंबेडकर के सुझावों को मानते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्ष की अनुमति से सुझाव दिया कि जिन बच्चों के वैधानिक अभिभावक हैं उनकी पूरी जानकारी और सहमति के बिना उनके बच्चों का धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव को सलाहकार समिति को वापस कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रस्ताव रखा कि अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति की सुरक्षा की गारंटी होगी और कानून इसे भंग नहीं करेगा। किसी भी अल्पसंख्यक को भाषा, धर्म के भेद के आधार पर शिक्षण संस्थानों में दाखिले से रोका नहीं जा सकेगा। किसी भी अल्पसंख्यक को अपने धर्म, भाषा, संस्कृति की रक्षा हेतु शिक्षा संस्था चलाने का अधिकार होगा। एक, संविधान सभा वाइस बुक थर्ड 1,5,1947, पृष्ठ संख्या 480 से 495। दो, वही पृष्ठ संख्या 497। पृष्ठ संख्या 26। राज्य किसी शिक्षण संस्थान को अनुदान देते समय अल्पसंख्यकों की भाषा और धर्म के आधार पर पक्षपात नहीं करेगा। KM मुंशी और महावीर त्यागी ने इस प्रस्ताव को भी सलाहकार समिति को वापस करने का संशोधन रखा, जिसका अंबेडकर ने कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि अल्पसंख्यकों को उदारता पूर्वक उन्हें अधिकार देने के मामले में पाकिस्तान के संविधान में अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार मिलते हैं, इसका इंतजार न करें। अल्पसंख्यकों के अधिकार पूर्ण होने चाहिए, इसे दूसरे पक्ष के आधार पर नहीं तौलना चाहिए। हमारे अधिकार देने के बाद यदि अपने देश में पाकिस्तान अल्पसंख्यकों को वैसे ही अधिकार नहीं देता, तो हम वार्ता द्वारा उनसे कूटनीतिक स्तर पर बात करके सुधार करने का दबाव डाल सकते हैं। हमें अपने विचार से जो न्याय संगत लगे उसे करना है। उनके सुझाव को मानकर सभा ने अल्पसंख्यकों से संबंधित उक्त सुझाव को स्वीकार कर लिया। भारत में नागरिकता की धारा को सभा में KM मुंशी ने पेश किया। के संथानम ने इसमें संशोधन रखा। उसके पक्ष में बोलते हुए अंबेडकर ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ, जो भारतीय संघ में निवास कर रहे हैं अथवा भारतीय संघ की प्रजा हैं, सभी भारत के नागरिक हैं। इस तरह इस धारा में संशोधन करने के लिए इसे सलाहकार समिति में वापस भेजा जाए। इस सुझाव को मानते हुए अध्यक्ष ने आगे विचार के लिए उक्त धारा को रोक लिया। संविधान सभा में स्वतंत्र चुनाव आयोग गठित करने का अनुच्छेद N. गोपाल स्वामी अयंगार ने प्रस्तुत किया। इसमें कुछ लोगों ने संशोधन रखे थे। परामर्शदात्री समिति की ओर से बहस का उत्तर देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मूल अधिकार संबंधी समिति की राय थी कि चुनाव न तो सही ढंग से हो सकते हैं और न तो अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं। जब तक चुनाव का नियंत्रण वर्तमान नौकरशाही के हाथ में रहेगा, कुछ लोगों की उसमें राय थी कि चुनाव नियंत्रण अफसर शाही के हाथ में ही रहे, लेकिन ऐसा होने पर वे लोग हुकूमत में बैठी पार्टी की रुचि के अनुसार चुनाव नियंत्रित करने में अधिकारियों की पोस्टिंग करने लगेंगे। किंतु मूल अधिकार विषय समिति ने सर्वसम्मत से निर्णय किया कि एक स्वतंत्र अधिकरण की ही देखरेख में चुनाव हो, तभी चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से हो सकेगा। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक केंद्रीय आयोग हो, जिसकी देखरेख में पूरे देश का चुनाव हो, उसी के अधीन राज्यों और स्थानीय निकायों के चुनाव को देखने के लिए स्थानीय आयोग भी गठित हो, यह विकेंद्रित हो। मेरी इच्छा केंद्रीकरण की नहीं है। मेरी मूल भावना है कि आज के राजकीय नियंत्रण से संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया मुक्त होनी चाहिए। 14 अगस्त का दिन भारत की संविधान सभा के लिए महत्वपूर्ण है। श्रीमती सुचेता कृपलानी के वंदे मातरम गायन से सभा की बैठक प्रारंभ हुई। रात में 10 बजे से बैठक पुनः शुरू हुई। उस दिन रात 12 बजे भारत को आजाद घोषित किया गया। सभा में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटेन बेटन की जयकार हुई और पुनः सुचेता जी ने सारे जहां से अच्छा और जनगण मन का गान किया और बैठक समाप्त हुई। एक संविधान सभा वाइस बुक थर्ड 1,5,1947, पृष्ठ संख्या 501। दो वही कॉमा पृष्ठ संख्या 527। पृष्ठ संख्या 27। नए वातावरण में 20 अगस्त को भारत की आज़ादी के प्रथम दिन सभा की बैठक हुई, जिसमें भारत की आज़ादी के कानून को नए संविधान के रूप में पिरोने पर विचार करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया। इस समिति में मावलंकार हुसैन इमाम, पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगार और वी एल मित्तर थे। इस कमेटी को अधिकार दिया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आवश्यक परिवर्तन करें और आज़ाद भारत के लिए नए संविधान के मसविदे का सुझाव प्रस्तुत करें। इसी कारण प्रायः कहा जाता है कि वर्तमान भारतीय संविधान अपने आप में नया कुछ नहीं है, अपितु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रारूप में तैयार संवैधानिक ढांचे में ही कुछ परिवर्तन कर तैयार किया हुआ एक दस्तावेज है। संविधान सभा में दलित वर्गों को संसद में प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव मूल अधिकार समिति की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखा था। अनुसूचित जातियों की उनकी आबादी के अनुपात में सीटें सुरक्षित रहेंगी और उनकी स्वयं की बिरादरी के एक निश्चित अनुपात में वोट मिलने की बंदिश समाप्त रहेगी। सरदार वल्लभ भाई को उम्मीद थी कि बिना बहस के यह धारा भी स्वीकार होगी। इसमें एस नागप्पा ने संशोधन प्रस्तुत किया कि अनुसूचित जाति के वे ही उम्मीदवार विजयी घोषित हों जिन्हें अनुसूचित जातियों के पड़े मतों का कम से कम 35% वोट मिला हो। इस संशोधन को प्रस्तुत करने की नोटिस में एस नागप्पा अकेले नहीं थे। सभा की कार्यवाही पढ़ने से लगता है कि संशोधन डॉक्टर अंबेडकर की ओर से दिया गया था, किंतु मूल अधिकार समिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल के विशेष आग्रह पर अंबेडकर साहब अपना संशोधन नहीं रखे। नागप्पा ने इस काम को किया। मद्रास से सभा में आई श्रीमती दक्षिणानी ने नागप्पा के संशोधन के बहाने हरिजनों को आरक्षण दिए जाने अथवा किसी तरह के आरक्षण का विरोध किया, जिसका सभा सदस्यों द्वारा प्रबल समर्थन किया गया। अध्यक्ष ने कहा, इस विषय पर काफी लोगों ने भाषण का समय मांगा है। सरदार साहब ने कहा, नागप्पा ने केवल भाषण करने के लिए यह संशोधन रखा है, वे अपना संशोधन वापस ले लेंगे। उन्हें अपने वर्ग को दिखाना था कि वे बिके नहीं हैं। यदि इसे गंभीरता से लिया जाएगा, तो भाव पैदा होगा कि इनकी बातों में कुछ दम है। अतः इस विषय पर बहस न कराई जाए। इस संशोधन पर सभा में एच जे खांडेकर ने जो भाषण किया है, उससे ज्यादा तथ्य प्रकाश में आया है। उन्होंने कहा है कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने में 4 सदस्यों का योगदान था, जिनमें अंबेडकर का नाम प्रथम था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से और अब तक हम लोग अंबेडकर को सुने और वे संयुक्त मतदान के नहीं अपितु पृथक मताधिकार के पक्षधर थे, किंतु उन्होंने अपने को इस संशोधन से अलग कर संयुक्त मताधिकार की बात स्वीकार कर देश हित में बड़ा काम किया है। सरदार साहब ने बहस का उत्तर देते हुए मुसलमानों के पृथक मताधिकार की मांग पर उन्हें कड़ी डांट लगाई। उन्होंने स्वीकार किया कि आज की परिस्थिति में अल्पसंख्यकों की हिफाजत करने में मुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। एक संविधान सभा वाइस बुक थर्ड 1.5.1947 पृष्ठ संख्या 260, 28 से 8-1947 दो वही पृष्ठ संख्या 265, 3 वही पृष्ठ संख्या 266। पृष्ठ संख्या 28। साथ ही उन्होंने अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों से भी अपील करते हुए कहा, डॉक्टर अंबेडकर और उनके ग्रुप ने पिछले दिनों में जो कुछ भी किया उसे भूल जाने की जरूरत है। उन्होंने बंबई के पृथक निर्वाचन की याद दिलाई कि उसमें दलितों को इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ी। उनके वर्ग का एक बड़ा आदमी जब भंगी बस्ती में टिकने गया तो महार जाति के ही लोगों ने उन पर पथराव किया। इसीलिए उन्होंने अपील की कि अनुसूचित जाति के नेताओं को सभी का विश्वास अर्जित करने की जरूरत है। वे अपनी हीन भावना से मुक्त हों, हम लोगों के बीच में अपने को अछूत न समझें। सरदार साहब के आह्वान पर नागप्पा ने अपना संशोधन वापस ले लिया। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा कार्यवाही समिति की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अनुसार संविधान सभा ही जब तक विधान के अनुसार नई धारा सभा गठित नहीं हो जाती तब तक कानून निर्मात्रे समिति का भी काम करेगी। संविधान बनाते समय संविधान सभा की अलग से बैठकें होंगी और कानून बनाते समय इसकी अलग से बैठकें होंगी। संविधान सभा के अध्यक्ष और कानून सभा के अध्यक्ष एक ही व्यक्ति होंगे। जो मंत्री संविधान सभा के सदस्य नहीं हैं, वे भी संविधान बनाने संबंधी कार्यों में मंत्री की हैसियत से सभा की बैठकों में भाग ले सकेंगे। इसी रिपोर्ट के आधार पर नियम बनाकर संविधान सभा ने अपनी आगे की कार्यवाही जारी रखी। इसी दिन पारित प्रस्तावों के आधार पर संविधान का एक मसविदा तैयार कर सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी गठित हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर बनाए गए। उन्हें अध्यक्ष बनाए जाने का सुझाव सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया है। इस मसविदा समिति ने काफ़ी प्रयत्नों के बाद 4 नवंबर 1948 को सभा के विचारार्थ मसविदा पेश किया। एक संविधान सभा वाइस बुक थर्ड 1.5.1947 पृष्ठ संख्या 310।